शांति। आज का हमारा विषय है निराकार परमात्मा शिव के साकार माध्यम कौन। सभी मनुष्य आत्माएं परमात्मा को निराकार स्वरूप में स्वीकार करती हैं, क्योंकि परमात्मा एक है और वो सभी आत्माओं का परम पिता है। ये भी माना जाता है कि परमात्मा ने जो ज्ञान दिया वो हम मनुष्य आत्माओं के लिए है। तो मन में ये प्रश्न उठता है कि निराकार परमात्मा ने वह ज्ञान हम मनुष्य आत्माओं को किस माध्यम द्वारा दिया। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं आशा दीदी। वेलकम दीदी, ओम शांति।
ओम शांति।
आशा दीदी, पिछले 57 वर्षों से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई है और वर्तमान समय ओम शांति रिट्रीट सेंटर, जो गुड़गांव में ब्रह्मा कुमारी इसका एक रिट्रीट सेंटर है, उसकी डायरेक्टर हैं। दीदी, सबसे पहले तो मन में ये प्रश्न उठता है कि निराकार परमात्मा किस माध्यम से अपना ज्ञान मनुष्य आत्माओं को देते हैं।
परमात्मा निराकार है, ज्योति स्वरूप है, उसके साथ साथ वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ज्ञान के सागर है, नव सृष्टि रचयिता है, पतित पावन सर्व के सदगति दाता, सर्व आत्माओं के पिता है। तो निराकार इस सृष्टि पर आए, यही समझ में आता है, क्योंकि ऊपर से बैठ करके करने की बात हो सकती है, वे तो कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य आत्माएं उस बात को कैसे कैच करें। परमात्मा इस सृष्टि पर आए हैं, उसकी यादगार है, शिवरात्रि मनाते हैं, ये उसी बात की यादगार है कि परमात्मा धरा पर आते हैं। दूसरा, जो इतने शिव मंदिर हैं, 12 ज्योतिर्लिंगा मठ है, और कोई भी मंदिर शिवलिंग की प्रतिमा के बिना अपूर्ण ही माना जाता है। तो ये सब निशानी है कि अवश्य परमात्मा ने धरा पर अवतरण लिया था और उसकी यादगार में हमने उनके मंदिर बनाए। तीसरा, श्रीमद् भगवद गीता जिसमें भगवानुवाच, तो भगवानुवाच शब्द प्रतीक है कि जरूर भगवान ने आकर के वाच किया होगा, बोला होगा। अब वो कैसे करेंगे? निराकार की महिमा में एक बात कही जाती है, बिन पगु चले सुने बिनु काना, कर बिनु करे कर्म विधि नाना। कैसे? परमात्मा दिव्य अवतरण लेते हैं, उन्हें स्वयं भू कहा जाता है। स्वयं भू अर्थात जो स्वयं इस धरा पर अवतरित होते हैं, और ये स्पष्ट है कि भगवान हम उन्हें ही कह सकते हैं, परमात्मा हम उन्हें ही कह सकते हैं जो जन सामान्य से न्यारे हो। परम आत्मा जो सुपीरियर हो, सुप्रीम हो, उसकी एक निशानी है कि वे देह धारी नहीं है, अकाय है, जिनकी काया नहीं है। काया उसे कहा जाता है जिसके द्वारा सुख दुख का अनुभव किया जाए। परमात्मा नस नाड़ी के बंधन में नहीं आते हैं, परमात्मा मां के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, परमात्मा मात पिता के द्वारा लालन पालन नहीं लेते हैं, परमात्मा त्रिगुणातीत है, सतरजतम्य नहीं आते, जिनका ना जन्म है ना युवा अवस्था है ना मृत्यु है। परमात्मा के कोई गुरु नहीं है। तो प्रश्न उठता है, ऐसे परमात्मा जिनकी ये बातें भी हैं और उधर उनको अपने नए सृष्टि की रचना का कार्य भी करना है, तो कैसे करते हैं? वे एक साधारण मानवीय तन का आधार लेते हैं, जो जन्म से नहीं परंतु उस मानव तन को उसकी वानप्रस्थ अवस्था में अडॉप्ट करते हैं। जैसे हम आत्माएं इस शरीर में हैं, परमात्मा उस शरीर को अडॉप्ट करते हैं जिसमें उनकी अपनी आत्मा भी है और साथ साथ परमात्मा भी है। तो परमात्मा उनके मुखारविंद से सहज ज्ञान और राज्यों की शिक्षा देते हैं। उनका नाम रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, जिन्हें आदि देव भी कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा अर्थात जिसके द्वारा प्रजा की रचना की गई, आदि देव अर्थात जिस माध्यम से आदि दैविक सृष्टि की स्थापना की गई। तो करने वाला है परमात्मा, परंतु ज्ञान सुनाने के लिए कोई तो मनुष्य तन चाहिए, नहीं तो हम कैसे सुनेंगे? इसलिए साधारण मनुष्य तन का आधार लेते हैं। ठीक है, अब परमात्मा अपना ये कर्तव्य गुप्त रीति से करते हैं। वे कहते हैं कि मैं प्रकृति को वश करके आता हूं, पर काय प्रवेश करता हूं। तो पर काय प्रवेश अन्य किसी की तो हो नहीं सकती, परमात्मा ही आकर के पर काय प्रवेश करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी काया नहीं है, ली हुई है, अडॉप्ट की हुई है, कर्तव्य करने के लिए वे लेते हैं।
किंतु कभी मन में ये भी प्रश्न उठता है कि हम गीता के भगवानुवाच में श्री कृष्ण के द्वारा उस भगवानुवाच को सुनते हैं, तो क्या परमात्मा ने, निराकार परमात्मा ने श्री कृष्ण का माध्यम लिया या उस साधारण तन का माध्यम लिया, इसे हम कैसे समझें?
देखिए, श्री कृष्ण परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है और वे तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म वाले हैं। परमात्मा ये भी कहते हैं कि मुझे साधारण तन में आया न जान करके लोग पहचान नहीं पाते हैं। श्री कृष्ण के लिए तो ये प्रश्न उठता ही नहीं है। श्री कृष्ण तो मनमोहक, इतने आकर्षक, आज भी वे इस धरा पर आ जाएं तो क्यों लग जाए उनके दर्शन के लिए। दूसरा, श्री कृष्ण सतयुगी सृष्टि के प्रथम महाराज कुमार हैं। सतयुगी सृष्टि में परमात्मा को आने की आवश्यकता ही नहीं है। किस लिए आएगा? परमात्मा को पतित पावन कहा गया। सतयुगी सृष्टि पतित सृष्टि तो नहीं है, वो तो पावन सृष्टि है। देवताओं की परछाई भी पतित सृष्टि पर नहीं पड़ते, तो वो तो पावन सृष्टि है। तो परमात्मा सतयुगी सृष्टि में तो आएंगे नहीं, जहां देवी देवताओं का निवास है। आए भी तो किस लिए आए, किस पर्पज से आए? जरूरत नहीं है। तो परमात्मा आते हैं उसी समय जब देवताएं पुण्य क्षीण हो चुके होते हैं, वो है कलयुग का अंत, तब परमात्मा आते हैं। इसलिए उस समय इस सृष्टि पर कोई देवी देवता देखने सुनने को भी नहीं मिलते, आसुरीयता चारों ओर दिखाई देती है। तो परमात्मा जब मनुष्य बिल्कुल साधारण हो जाता है, रोग ग्रस्त शोक ग्रस्त और हर प्रकार के बंधन में होता है, तब परमात्मा आकर के ऐसे पतित मनुष्य आत्माओं को भावन देवता बनने का ज्ञान देते हैं। तो जो श्रीमद् भगवद गीता में भगवानुवाच शब्द है, वह भगवानुवाच निराकार को ही लगता है, कि परमात्मा के लिए कहा गया, न कि देवता श्री कृष्ण के लिए।
यानी ये स्पष्ट होता है कि निराकार परमात्मा शिव श्री कृष्ण के द्वारा भगवानुवाच नहीं करते।
नेचुरल है ना कि श्री कृष्ण जो है उन्हें सागर में पत्ते के ऊपर दिखाते हैं बाल रूप। फिर आप देखें उन्होंने जन्म लिया, उनका जन्म दिखा दिया है कि बड़ा अचरजी था, जेल में थे, जेल के ताले खुल गए और ये सब था। इन सब चीजों का भी रहस्य है जो मैं आगे चलकर के यदि वार्ता में ये बात आएगी तो मैं बताऊंगी। परंतु जो परमात्मा की गुण है वो श्री कृष्ण पर लागू नहीं होते, उनकी महिमा और उसकी महिमा में अंतर है। श्री कृष्ण ने जन्म लिया माता पिता के द्वारा, उन्होंने लालन पालन लिया, स्कूल भी पढ़े, गुरु भी किए, ये सब कुछ था। परंतु परमात्मा तो ये नहीं करता। और जब गुप्त वेश कहा गया, मुझे साधारण रूप में लोग पहचानते नहीं, तो श्री कृष्ण के लिए तो नहीं कहा जा सकता। वो ब्रह्मा के लिए कह सकते हैं, जो कि साधारण तन था, मानवीय तन था, उसके लिए कहा जा सकता है, श्री कृष्ण के लिए नहीं। श्री कृष्ण दैवी राजकुमार हैं और ब्रह्मा इस वही श्री कृष्ण की आत्मा अपने पूरे कल्प में चक्कर लगा करके अंत में कृष्ण की ही आत्मा ब्रह्मा की होती है। वो उनका फर्स्ट जन्म श्री कृष्ण का और लास्ट जन्म ब्रह्मा का। तो लोग कंफ्यूज कर लेते हैं कि परमात्मा शिव ने शायद श्री कृष्ण के द्वारा ज्ञान दिया, क्योंकि महिमा संपूर्ण स्वरूप की होती है ना। जिस समय व्यक्ति पढ़ता है तो उसकी पढ़ाई की कोई महिमा नहीं है, लेकिन पढ़ करके जब वो डिग्री प्राप्त कर लेता है, स्टेटस प्राप्त कर लेता है, तब उसकी महिमा होती है। तो परमात्मा ने जो ज्ञान प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम के द्वारा दिया, उसे प्रजापिता ब्रह्मा ने अपने जीवन में श्रीमत का पालन करते हुए बहु धारण किया और उस ज्ञान को ही धारण करके उन्होंने श्री कृष्ण का देव पद प्राप्त किया। वो उनका संपूर्ण स्वरूप है। तो ब्रह्मा गुप्त हो जाते हैं और श्री कृष्ण की महिमा हो जाती है। तो जैसे कहते भी कोई व्यक्ति अपने टीचर जैसा है, मतलब स्टूडेंट भी कोई बहुत अच्छा होता है तो कहते हैं। तो परमात्मा ने अपना ये जो ज्ञान दिया हमको वो ब्रह्मा के माध्यम से, ब्रह्मा ने पुरुषार्थ करके स्वयं को ऐसा देवता बनाया। ठीक है, ये क्लियर होता है। तो कृष्ण जो है वो ब्रह्मा की ही आत्मा है। फर्स्ट जन्म में श्री कृष्ण जी को श्याम सुंदर भी कहते हैं, तो श्याम बनते हैं वो, श्याम से सुंदर बनते हैं, श्यामल हैं जब कलयुग के एंड में ब्रह्मा के रूप में है, और सुंदर बनते हैं जब उस ज्ञान को धारण करके नया अपना शरीर धारण करते हैं, श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा सो श्री कृष्ण, कहावत भी ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, तो वो कैसे, किस हिसाब से? यही ब्रह्मा पुरुषार्थ करके वे बन जाते हैं श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण को विष्णु का साकार रूप माना जाता है। तो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, अर्थात यही विष्णु जी श्री कृष्ण अपने पूरे 84 जन्म के पश्चात अंत में ब्रह्मा के रूप में होते हैं।
ये तो स्पष्ट होता है, और ये बात जो आपने कही कि भगवानुवाच है कि कोटों में कोई मुझे पहचान पाते हैं, और यदि परमात्मा श्री कृष्ण के रूप में ज्ञान को देंगे तो हम सभी उनको पहचान पाएंगे। जरूर ही उन्होंने किसी गुप्त वेश में आकर परकाया प्रवेश कर इस ज्ञान को हम तक पहुंचाया।
हम उसकी निशानी भी आप देखेंगे कि शिव जी के मंदिर में नंदी गण रखा जाता है। अब कोई बैल पर सवारी तो नहीं कर सकते ना ज्योतिबिंदु निराकार,
राइट,
लेकिन नंदी गण अर्थात जो आनंद प्रदान करने वाला हो, गण माना पीपल, नंदी माना आनंद देने वाला, तो जो आनंद प्रदान करने वाला है। तो परमात्मा शिव ब्रह्मा के रथ में जब अवतरित होते हैं, उस ज्ञान को सुनकर सामान्य लोग आनंदित होते हैं और उसे जीवन में अपनाते हैं, इसलिए नंदीगण दिखाया जाता है।
दीदी, आपने श्री कृष्ण के बारे में तो हमें स्पष्ट किया और ये भी बताया कि कैसे परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करते हैं, किंतु फिर भी हम ये जानना चाहेंगे कि वो साकार माध्यम चुनने का क्या क्राइटेरिया होता है? परमात्मा ने ब्रह्मा को ही क्यों चुना साकार रूप में?
देखिए, जिस रथ को वो चुनते हैं वह अनुभवी रथ चाहिए, अनुभवी आत्मा चाहिए, ऐसी आत्मा जिसने आदि से लेकर के सृष्टि में पूरा चक्र लगाया हो। वो श्री कृष्ण का फर्स्ट रूप और पूरे अपने चक्र लगाने के पश्चात ब्रह्मा। दूसरा, उस आत्मा को इस सृष्टि में भी संसार का अनुभव हो, अनुभवी रथ लेते हैं, तो वे साधारण गृहस्थी, जो घर गृहस्थ में रहने वाला सामान्य लोगों की तरह ऐसा व्यक्ति होता है, ऐसी आत्मा होती है जिसका रथ वे अडॉप्ट करते हैं। तीसरा, ना तो वो बहुत अमीर और ना ही बहुत गरीब, बीच की सामान्य अवस्था वाला होता है, इसलिए ब्रह्मा का जो तन है ये यूं चुना गया। और बुजुर्ग, जिसने अपनी पूरी आयु संपन्न की हो, 60 वर्ष की आयु के पश्चात उस रथ को बाबा अडॉप्ट करते हैं, शिव बाबा अडॉप्ट करते हैं, इस हिसाब से वो अनुभवी रथ। तभी आप देखेंगे, और कोई देवी देवता नहीं है जिसके दाढ़ी मूछ दिखाई जाती है,
राइट,
दाढ़ी मूछ दिखाई जाती है तो केवल एक ब्रह्मा की। क्यों? ब्रह्मा इस सृष्टि से ही था, इसलिए साधारण मनुष्य था, आपके हमारे जैसा था, इसलिए उसकी ये
दिखाई जाती है।
तो परमात्मा ऐसे रथ को चुनते हैं जिसको हर प्रकार का अनुभव है, सारी सृष्टि में चक्र लगाए हैं और संसार का भी पूर्ण रूप से अनुभवी होता है, उस रथ के द्वारा सुनाते हैं।
दीदी, निराकार परमात्मा ने ब्रह्मा जी का माध्यम चुना, लेकिन जब हम ब्रह्मा जी को पिक्चर्स के रूप में या उनके मेमोरियल्स के रूप में देखते हैं तो उनके हाथों में वेद और शास्त्र दिखाए जाते हैं और उन्हें कमल पुष्प पर बैठा हुआ दिखाया जाता है, इससे क्या भावार्थ है?
इसका बहुत ब्यूटीफुल सिंबॉलिक मीनिंग है। अब सोचने की बात है, कमल के फूल पर तो कोई भी व्यक्ति बैठ नहीं सकता, लेकिन परमात्मा शिव आकर के जो ज्ञान देते हैं उसमें एक मुख्य बात यह है कि रहना आपको इस संसार में ही है, लेकिन संसार में रहते हुए अपने आप को कमल पुष्प के सदृश अनासक्त रखना है। संसार में रहते हुए पांच विकारों से स्वयं को, पांच विकारों के कीचड़ से स्वयं को मुक्त रखना है, इसलिए कमल पुष्प का आसन बताते हैं। दूसरा, हाथों में वेद शास्त्र इत्यादि दिखाना ये इस बात का प्रतीक है कि परमात्मा आकर के हमें संपूर्ण ज्ञान देते हैं, हर बात का ज्ञान देते हैं जो बाद में जाकर के इन सब शास्त्रों में लिखा जाता है। तो परमात्मा ने जो ज्ञान दिया, जिसको हम कहें कि भाई श्रीमद् भगवद गीता को आजकल लोग मानते हैं भगवानोवाच, उसी में है और तो कोई शास्त्र में नहीं है। तो श्रीमद् भगवद गीता को भी हम क्या कहते हैं कि वो सर्व शास्त्रों की
शिरोमणि
है, सर्व शास्त्रों से मय है, जिसमें सारा ज्ञान एसेंस रूप में निहित है। तो परमात्मा ने आकर के ब्रह्मा के द्वारा हर प्रकार का ज्ञान दिया, इसलिए उनके हाथों में ये सब दिखाते हैं। आप देखिए, इसी चीज को ब्रह्म मंत्र कहते हैं, ब्रह्मा भोज के रूप से कहते हैं, ब्रह्म ऋषि कहते हैं, ब्रह्मा की यादगारों में इस तरीके की बहुत सारी बातें आती हैं, जो वर्तमान समय अपने इस जन्म की ये बातें होती हैं, जिसमें हमारी ब्रह्म विद्या कहते हैं, और जब ब्रह्म कोई वो ब्रह्मलोक नहीं, ब्रह्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, ब्रह्मा के द्वारा दी हुई एडवाइस जिसको मंत्र कहते हैं, ब्रह्मा की कन्याएं जिसको ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां कहते हैं।
ये भी तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण रचे,
वो इनके मुखारविंद से ही ब्राह्मण रचे जाते हैं, जिसको कहते हैं कि ब्रह्मा परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा यज्ञ रचा जिससे देवता पैदा हुए और वृद्धि को प्राप्त हुए। तो कलयुग अंत में तो कोई हमको देवता नजर नहीं आ रहे, तो यहाँ पर ब्राह्मण रचते हैं, वो ब्राह्मण जीवन में ज्ञान और योग अपनाते हैं, जिससे फिर हम देवता पद की प्राप्ति करते हैं। फिर सत्युग आ जाता है, देव पद हमारा होता है, और उसके बाद देवताएं जो बढ़ते जाते हैं तो दैवी सृष्टि हो जाती है। तो मिश्रण हो गया या मिक्सर हो गया, कन्फ्यूजन हो गया, वो ये कि परमात्मा शिव तो निराकार ज्योति बिंदु जो इन आंखों से दिखते ही नहीं है, और वो अपना कर्तव्य करते हैं ब्रह्मा के द्वारा, देखने में ये ब्रह्मा आता है, गुप्त रूप से ये अपना कार्य करता है, और यही ब्रह्मा आगे चल के श्री कृष्ण बन जाते हैं। तो ब्रह्मा के द्वारा जो कर्तव्य किया वो सारा गुप्त लाइन में चला गया, और जो उससे प्राप्ति होती श्री कृष्ण पद की, उसका गायन हो गया। इस प्रकार ये तीनों जीवन कहानियां जो है वो आपस में मिल जाती हैं, और ये कन्फ्यूजन हो जाता है जिसको परमात्मा ही आकर के फिर क्लियर करते हैं।
पिता पहचान लो अपना बसेरा
प्राप्ति होती श्री कृष्ण पद की उसका गायन हो गया। इस प्रकार ये तीनों जीवन कहानियां जो है वो आपस में मिल जाती हैं और ये कंफ्यूजन हो जाता है जिसको परमात्मा ही आकर के फिर क्लियर करते हैं।
अब आखिरी और सबसे अहम सवाल कि वो निराकार परमात्मा कब उस साकार पेन का माध्यम लेते हैं।
ये थोड़ा समझने की बात है। लोग कहते हैं कि परमात्मा हर युग में आते हैं, कोई कहते हैं परमात्मा 24 अवतार लेते हैं। अब प्रश्न उठते, एक सामान्य व्यक्ति सोचता है वो परमात्मा वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, उसको बार बार आने की जरूरत क्या है। कोई गड़बड़ होती है तो जो एक्सपर्ट होता है वो एक ही बार आके सब कुछ ठीक करके चला जाता है। तो परमात्मा को भी इस धरा पे बार बार आने की जरूरत नहीं है। वे एक ही बार आकर के अपना सारा कार्य करते हैं, लेकिन कब करते हैं? सत्युग में तो सब कुछ सही सलामत है, अच्छे हैं, तो वहां पर बैठ करके काम महाशत्रु है और इनको जीतो, विकर्मा जीत बनो, निद्रा जीत बनो, ये सब चीजों की तो जरूरत नहीं है। सत्युग की सृष्टि है ही अच्छी, त्रेता युगी वो भी इतनी बुरी नहीं है, द्वापर युगी शुरुआत होती है तम की, लेकिन जब धर्म की अति ग्लानी है, परमात्मा के महावाक्य में किस लिए आता हूं, अधर्म का नाश करने और सद्धर्म की स्थापना करने आता हूं, तो अधर्म की जो चरम सीमा है वो कहां हमें मिलती है? वर्तमान कलयुग में, कलयुग के इस अंतिम चरण में, जब धर्म अपने पथ से बिल्कुल विलग हो जाता है और जो धर्म ज्ञानी के चिन्ह महाभारत काल में बताए गए हैं वे सब आज हम देख रहे हैं। नारी तिरस्कार, सिद्धांतहीन राजनीति, प्रेम रहित प्रभुत्व, विवेक शून्य आनंद, अनाज का पुड़ियों में बिकना आदि आदि आदि, वो सब हमें आज दिख रहे हैं और अति में है। तो परमात्मा तब ही आते हैं जब अति धर्म की ग्लानि है और वो वर्तमान काल है, जब परमात्मा अपना कर्तव्य कर रहे हैं। अब ये हमारी अपनी समझदारी होगी कि जब परमात्मा इस धरा पर अपना कर्तव्य कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? अधर्म का नाश, सद्धर्म की स्थापना, उस कार्य में सहयोगी बनना होगा।
थैंक यू दीदी, आपने हमें इसका बोध कराया कि वर्तमान समय ही निराकार परमात्मा शिव आकर हम आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं। और विवेक ये कहता है कि इस मंगल बेला का हमें उपयोग करना चाहिए और आए हुए परमात्मा से अपने सुख और शांति का वर्षा अवश्य प्राप्त करना चाहिए। ओम शांति।